नमस्कार भारत, तारीख 13 अगस्त, दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। सीरिया के इदलिब प्रांत में धमाका, 12 बच्चों समेत कम से कम 39 के मरने की रिपोर्ट।
फिजार मजूल मजदार तवज्जहत फिराक दिफा अलमदनी में मुदिरियत इदलिब मुदिरियत।
भोपाल में एक और मूक बधिर छात्रा ने छात्रावास संचालक पर लगाया रेप का आरोप, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, प्रदेश के मंत्री बोले,
ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना अपने आप में पाप है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है।
और छत्तीसगढ़ में उठी असम की तर्ज पर नागरिक रजिस्टर तैयार करने की मांग।
1971 में यहाँ शरणार्थियों को बसाया गया, विरोध उस बात का है कि बिहार में बहुत सारे बंगाली आ गए।
होगी पाकिस्तान डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुआ सिनी से। सीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब में हुए एक धमाके में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के असर से एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। धमाके के वजह की अब तक जानकारी नहीं मिल सकी है। कहा जा रहा है कि इसमें मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अमरीका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास दक्षिणपंथी और गोरों को श्रेष्ठ मानने वाले लोगों के एक समूह ने यूनाइट द राइट नाम की एक रैली निकाली है। रैली के आयोजक इसे वाइट सिविल राइट्स रैली कह रहे हैं। वहीं काले लोगों के अधिकारों के समर्थक और ब्लैक लाइव्स मैटर नामक संस्था ने भी दक्षिणपंथियों के विरोध में एक रैली निकाली। ब्लैक लाइव्स मैटर समूह की एक सदस्य माकिया ग्रीन ने कहा,
When we think about the people who have been murdered recently by police, by white nationalists, white supremacy,
जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी पुलिस और गोरे राष्ट्रवादियों ने हत्या कर दी, तो लगता है कि ये श्रेष्ठतावाद इतना व्यापक है कि ये हमारे समुदाय पर हर तरह से असर डाल सकता है। ब्लैक लाइव्स मैटर समूह की सदस्य माकिया ग्रीन के शब्द। दक्षिणपंथियों ने इससे एक साल पहले भी वर्जीनिया में एक ऐसी ही रैली की थी, जिसके बाद अमरीका में नस्लवादी हिंसा और तनाव बढ़ गया था। इस रैली के दौरान हिंसक झड़प में एक महिला की मौत भी हो गई थी। माली में लोगों ने रविवार को देश का राष्ट्रपति चुनने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले। चुनाव के पहले दौर में कुछ जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां देखी गईं और तकरीबन 700 पोलिंग स्टेशनों पर लोगों को वोट डालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों से वोटिंग में धांधली की खबरें भी आईं। इस चुनाव में इब्राहिम बागबार कीता की जीत की उम्मीद जताई जा रही है। कीता के आलोचक उन पर माली में जिहादी हमलों को रोकने में नाकामी का आरोप लगाते आए हैं। वोट डालने वाले एक शख्स ने कहा कि चुनाव में चाहे जो भी जीते, उसे देश के लिए काफी काम करना होगा।
Alors, le futur président, c'est vraiment amorcer encore et accélérer notre développement, faire en sorte que notre...
नए राष्ट्रपति को माली के विकास कार्यों को बढ़ाना होगा ताकि हम आर्थिक संकट से हमेशा के लिए निजात पा सकें। इसके अलावा उनके लिए नागरिकों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होगी। माली राष्ट्रपति चुनाव के एक मतदाता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। टाइफून यागी फिलीपींस से होते हुए चीन के पूर्वी इलाकों में पहुंच चुका है। चीनी मीडिया के मुताबिक 1,35,000 से ज़्यादा लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। साथ ही जहाज़ों को बंदरगाह की तरफ लौटने के निर्देश भी दिए गए हैं। बाढ़ और बढ़ते पानी के बीच चीनी सोशल मीडिया में एक दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पानी में डूबी हुई है और मुस्कुराती हुई शादी के लिए जा रही है। तुर्की के वित्त मंत्री और राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद बेरत अलबायरक ने कहा है कि उन्होंने देश की मुद्रा लीरा की गिरती कीमत और मौजूदा अर्थसंकट से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है। हुर्रियत नाम की एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बेरत ने कहा कि नया प्लान लीरा की गिरती कीमत पर लगाम लगाएगा, साथ ही बैंकों और छोटे कारोबारों की मदद भी करेगा। डोमिनिक रिपब्लिक की राजधानी सैंटो डिमोंगो में हजारों लोग सरकार के खिलाफ हरे रंग के कपड़े पहनकर मार्च कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर दमखम के इम्तिहान में फेल हो गई। भारत को मेजबान इंग्लैंड ने कल पारी और 159 रन से हरा दिया। विराट कोहली की टीम की ये लगातार दूसरी हार है। मैच के बाद टीम कई सवालों में घिरी है, हम उन सवालों पर आगे बात करेंगे। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया साक्षात्कारों को लेकर भी पूछे जा रहे हैं, हम उन सवालों को भी परखेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। सीरिया में विद्रोहियों के आखिरी बड़े गढ़ इदलिब प्रांत की एक इमारत में धमाका होने की रिपोर्टें सामने आई हैं। निगरानी समूहों और बचाव में लगे लोगों के हवाले से आई रिपोर्टों के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल हैं। धमाके के बाद से कई लोग लापता हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सिंधु वासनी से।
सीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब से आ रही खबरों के मुताबिक वहां एक धमाके में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक धमाका सारमड़ा शहर में हुआ। इसकी वजह से वहां एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। जिस इमारत को नुकसान पहुंचा है वहां एक हथियार तस्कर ने हथियार रखे हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। तुर्की की सीमा के करीबी शहर सारमड़ा में मौजूद समाचार एजेंसी AFP के एक संवाददाता ने बताया कि रविवार को धमाके के बाद बचाव कर्मियों को मलबा हटाने के लिए बुलडोजरों का इस्तेमाल करना पड़ा। इदलिब में सिविल डिफेंस टीम के साथ काम करने वाले अबू मारवान ने बताया, धमाके की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। इदलिब और एलेप्पो से सिविल डिफेंस टीमें धमाके की जगह पर भेजी जा चुकी हैं। हम पीड़ितों और भारी नुकसान को देखकर सदमे में हैं। जिन इमारतों में कभी लोग रहते थे वो अब सिर्फ मलबा बनकर रह गई हैं। ये थे इदलिब सिविल डिफेंस टीम के सदस्य अबू मारवान के शब्द। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि वहां अब भी दर्जनों लोग लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। माना जा रहा है कि इमारत में मौजूद रहे लोगों में से ज्यादातर उन जिहादी लड़ाकों के परिजन थे जिन्होंने सीरिया के दूसरे हिस्सों से बाहर निकाले जाने के बाद इदलिब में शरण ली हुई थी। इदलिब सीरिया में विद्रोहियों का आखिरी बड़ा गढ़ है। माना जाता है कि सीरिया की सशस्त्र सेनाओं का अगला निशाना यही प्रांत होगा। हालिया महीनों में रूस और ईरान के समर्थन से सीरिया की सरकार ने पूरे देश में विद्रोहियों और जिहादी समूहों के खिलाफ आक्रामक अभियान में इजाफा किया है और आने वाले कुछ दिनों में इन सैन्य अभियानों के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासनी। अगली खबर भारत के राज्य मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक और मूक बधिर छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसके साथ छात्रावास संचालक ने बलात्कार किया। ऐसा आरोप लगाने वाली वो चौथी छात्रा हैं। आरोप के घेरे में आए छात्रावास संचालक गिरफ्तार हैं और सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दे रही है, लेकिन चुनावी साल में विपक्ष इस मुद्दे को हथियार बनाने की कोशिश में है। सुनिए शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
भोपाल में निजी छात्रावास के संचालक पर एक और लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है। अब तक कुल 4 लड़कियां सामने आ चुकी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ हॉस्टल के संचालक अश्विनी शर्मा ने बलात्कार किया है। मुक बधिर इन लड़कियों का आरोप है कि हॉस्टल संचालक उन्हें अपने साथ रखते थे और उनके साथ गलत हरकतें करते थे। कई बार उन्हें अश्लील फिल्में भी दिखाई जाती थी। इस मामले में पहले ही हॉस्टल संचालक अश्विनी शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं उनके हॉस्टल में काम करने वाली एक महिला ने बताया,
कभी कभी आते थे वो, 8 दिन में एक बार, 1-2 घंटे, आधे घंटे के लिए आते थे। जब भी आते थे लड़की साथ आती थी, लेकिन इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है उनके बीच में कैसा संबंध है, क्या है, ये मुझे पता नहीं।
लेकिन अब इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर प्रदर्शन कर सरकार को घेर रही है। वहीं पार्टी का आरोप है कि आरोपी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस ने पहले एक वीडियो जारी कर बताया था कि किस तरह से आरोपी मुख्यमंत्री के पैर पड़ रहा है। पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है,
सरकार कल तक इस बात की बार बार जो है इस बात से इनकार कर रही थी कि उन्होंने न तो संस्था को कोई अनुदान दिया है, न संस्था के बारे में कोई पंजीकरण है और उन्होंने केवल जो है छात्रों को छात्रवृत्तियां दी हैं। ये लेकिन ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहुंच के लोगों द्वारा इस संस्था को विशेष प्रकरण मानकर और विशेष योजना के तहत जो लाभ दिया गया है उस लाभ के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के बड़े लोग इसमें शामिल हैं।
लेकिन सरकार विपक्षी कांग्रेस के सभी आरोपों से इनकार कर रही है। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि इस मामले में की गई कार्रवाई बताती है कि सरकार आरोपी को सख्त से सख्त सजा देना चाहती है।
कांग्रेस का इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बिना आधार के बयान देना भी बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना अपने आप में पाप है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और हमारी सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किया है। हमने 12 साल से छोटी बच्ची के साथ रेप करने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान किया देश में पहली बार। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सजा मिल जाए इसका प्रावधान किया।
भोपाल के इस हॉस्टल में मूक बधिर बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। करीब एक साल से हॉस्टल का संचालक अश्विनी शर्मा युवतियों के साथ कथित बलात्कार कर रहा था। यह मामला तब सामने आया जब एक युवती ने इस घटना के बारे में धार पहुंचकर अपने घर वालों को बताया। इसके बाद तीन अन्य युवतियों ने भी अश्विनी शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में और भी जांच कर रही है। आरोपी को सामाजिक न्याय विभाग से अनुदान मिलता था। शुरहनिया, ZBBC न्यूज, भोपाल।
उधर मध्य प्रदेश से लगे छत्तीसगढ़ में असम की तर्ज पर नागरिक रजिस्टर यानी NRC तैयार करने की मांग उठ रही है। ये मांग आदिवासी नेताओं ने उठाई है। इसे लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस की राय मटी हुई है। सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
आज से 48 साल पहले 1970 में बांग्लादेश से आए लोगों को आदिवासी बहुल बस्तर में बसाया गया था। आज इनकी आबादी करीब 3 लाख है और ये बस्तर के लगभग 150 गांवों में फैले हैं। शरणार्थी के तौर पर बसाए गए इन लोगों को सरकार ने जमीन दी थी और रोजगार के दूसरे साधन भी उपलब्ध कराए थे। लेकिन आज बस्तर के कई गांव ऐसे हैं जहां आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं। परलकोट इलाके में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के 135 गांव हैं और इसी इलाके में आदिवासियों के 132 गांव। अब जब असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का मसौदा आने के बाद कथित बाहरी लोगों को लेकर विवाद शुरू हुआ है, यहां छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी संगठनों ने असम की तर्ज पर संदिग्ध लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर करने की मांग शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष BPS नेताम कहते हैं,
1971 में यहाँ शरणार्थियों को कई स्थानों में बसाया गया। अब उसको बसाया गया ठीक है, उसको स्वीकार कर लिए, उसका विरोध नहीं है। विरोध उस बात का है कि उसके आड़ में बहुत सारे बंगाली आ गए।
नेताम का कहना है कि ऐसे कथित अवैध लोगों को बाहर किया जाए। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता चरण दास महंत का मानना है कि बाहर से जो भी आया है उसे शरण मिलनी चाहिए।
चाहे इंदिरा जी के समय हो चाहे पूर्व में भी हो, भारत ने सबको शरण दिया है और हम लोग किसी को यहाँ से भगाए नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई आता है, मेहमान बन के आता है, गरीब बन के आता है, तो हम लोगों को उनको रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए, ये हमारी प्राथमिक जवाबदारी है।
हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस नेता चरण दास महंत की इस राय के खिलाफ है।
इस देश को धर्मशाला बना दोगे क्या? कोई भी आके इस देश में, कोई आपके घर में आएगा, आपके परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग आके आपके घर में कब्जा कर ले, आपके पास जो संसाधन है उसका उपयोग करने लगे तो आप मंजूर करोगे? इस देश में ये संभव ही नहीं है।
रमन सिंह का कहना है कि शरणार्थियों के नाम पर सबको रहने की छूट नहीं मिल सकती।
ये कांग्रेस के लोग वोट की राजनीति के लिए देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये समझ के परे है, मगर देश की जनता ने इस बात को लेकर और खासतौर से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने और गृहमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के नागरिकों को हटाया नहीं जाएगा, पर जो बाहर से घुसपैठिए आए हैं जिनकी नागरिकता नहीं है उनको हटाया जाएगा।
फिलहाल आदिवासी संगठन लामबंद हो रहे हैं और इस चुनावी साल में छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर के इलाके में अगर कथित बाहरी लोगों की नागरिकता का सवाल चुनावी मुद्दा बन जाए तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आलोक पुतुल, BBC, छत्तीसगढ़।
और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया साक्षात्कार चर्चा में हैं। इन साक्षात्कारों में प्रधानमंत्री ने लिंचिंग, NRC और रोजगार के मुद्दों पर उठने वाले सवालों का जवाब दिया है। इंटरव्यू करने वाले एक अखबार ने जानकारी दी है कि ये ईमेल इंटरव्यू है, यानी सवाल ईमेल पर भेजे गए थे। साक्षात्कार के इस तरीके पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से बात की और सबसे पहले पूछा कि इस वक्त प्रधानमंत्री का इस तरह का साक्षात्कार आने के क्या मायने हैं।
साफ है, टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में तो ये लिखा गया है कि ये ईमेल के ऊपर आधारित इंटरव्यू है, यानी कि इनमें कोई प्रतिप्रश्न नहीं है। दूसरे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने सवाल पूछे गए थे उन सबके जवाब दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमने कौन कौन से और सवाल पूछे थे जिनके जवाब नहीं दिए गए हैं। इसका एक सीधा साधा सा मतलब ये है कि ये सरकारी सामान्य जो एक जानकारी देने वाला बड़ा प्रेस नोट होता है वैसा ही कुछ है, लेकिन महत्वपूर्ण है ये इंटरव्यू प्रधानमंत्री के नाम से इस वक्त क्यों आया है। ये कहा जा रहा है बार बार और पत्रकारों की तरफ से भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सवालों के जवाब नहीं देते, सीधे जवाब नहीं देते। ऐसा मुझे लगता है कि ये एक तो जवाब देने का प्रयास है कि नहीं हम इंटरव्यू देते हैं। दूसरे, अगर आपको याद हो तो 2014 के चुनाव के पहले भी मोदी जी के कुछ इंटरव्यूज इसी तरीके से आए थे, तो यानी एक प्रकार से चुनाव की तैयारी है या चुनाव पूर्व की जो एक योजना है या जो बात कही जानी है प्रधानमंत्री की ओर से, वो उसका एक पहला चरण है। लेकिन इस इंटरव्यू की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये कि ये ईमेल पर आधारित है। ये वैसे वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं है जिसमें कोई सवाल पूछता है और समझ में नहीं आता तो दोबारा सवाल पूछता है, या कोई ऐसा सवाल पूछता है जो तिलमिलाए या व्यक्ति को थोड़ा व्यथित करे।
आपकी नजर में इस इंटरव्यू का सबसे उल्लेखनीय पहलू क्या है?
एक सवाल किया गया है उसमें कि आप क्या लेकर के चुनाव में जाएंगे, कौन सी तीन बातें लेकर के चुनाव में जाएंगे, एक ये सवाल, और एक सवाल जो लिंचिंग और आर्थिक भगोड़ों को लेकर के या इस प्रकार के सवाल है। तो जो सवाल ये किया गया कि तीन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो वो कहते हैं विकास, तेज विकास और सबका विकास। आप प्रधानमंत्री की बात पर गौर ये करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या वो कहना चाह रहे हैं और क्या वास्तव में है देश के सामने। हमें समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री 2014 के चुनाव में भी लगभग यही बातें थी, विकास, तेज विकास, सबका विकास, लेकिन जो इस वक्त बीजेपी की राजनीति को लेकर के जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं वो ये कि क्या हम देश में सामाजिक विघटन का, टूट फूट का, या दो या तीन वर्गों के बीच में भेदकारी रीतियां अपना रहे हैं। तो इसका जो सवाल लिंचिंग वगैरह से जुड़ा हुआ था उसके सवाल जवाब में उन्होंने सिर्फ इतनी बात जरूर कही है कि लिंचिंग मेरी दृष्टि में अपराध है और उसके पीछे कोई भी इंटेंशन हो, लेकिन काओ विजिलेंटिज्म में के बारे में या गोरक्षकों के बारे में या जो आए दिन किसी प्रकार से जाति या दलितों के साथ हुई मारपीट या और किसी तरीके की मारपीट के बारे में उन्होंने कोई सीधी बात नहीं कही। ये बात समझ में नहीं आती कि क्या पार्टी इसी दृष्टि से सोचती है कि विकास, सबका विकास वगैरह, और क्या वो लिंचिंग वगैरह के खिलाफ सीधे सीधे वही रीति रखती है, विचार रखती है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो ऐसा है तो बहुत सारे जो पार्टी के नेता या कुछ यहाँ तक कि मंत्री और एक आध मुख्यमंत्री भी जैसी बातें बोल रहे हैं उनका खंडन क्यों नहीं होता, उनके खिलाफ क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने सीधे कोई बात।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। और अब सिंधु वासनी से जान लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां। जी सिंधु।
जी वात्सल्य, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये वो नारा है या कहें कि ये वो पंचलाइन है जिसे बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव से पहले वोटरों को रिझाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी शीर्षक की एक कविता आज़ादी से पहले लिखी गई थी। कविता कुछ इस तरह थी, ऐ मादरे हिंद न हो गमगीन, अच्छे दिन आने वाले हैं, आज़ादी का संदेश तुझे अब जल्द सुनाने वाले हैं। और अंग्रेज सरकार इस कविता से इतना डर गई थी कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिलहाल अभी ये कविता दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के में वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी है, प्रतिबंधित साहित्य प्रदर्शनी, वहाँ पे ये कविता लगी है और काफ़ी लोगों का ध्यान खींच रही है। ये पता नहीं कि कविता किसने लिखी, लेकिन अभी 15 अगस्त आने वाला है तो काफ़ी चर्चे हैं इस कविता के। और ये खबर है दैनिक जागरण की एंकर स्टोरी।
जी,
इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट है जो सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद को उजागर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हाईकोर्ट के जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो नाम सुझाए थे उन नामों में से आधे से ज्यादा नामों में किसी न किसी तरीके की आपत्ति जताई है। एक और खबर है जो बहुत से अखबारों के पहले पन्ने पर है, आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स में अब 50% महिलाओं की भर्ती होगी, यानी उन्हें 50% आरक्षण मिलेगा।
यानी मिशन 50-50।
हाँ
जी, बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वस्तुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी। आज वसुत साहब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कह रहे हैं, लेकिन क्यों, सुन लीजिए।
अब तो मैं भी सोचने लगा हूँ कि जब तक ट्रंप साहब राष्ट्रपति हैं, किसी और को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हाथ पांव हिलाने की क्या ज़रूरत, भले वो अलकायदा ही क्यों ना हो। सोचिए 9/11 को अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से विमान क्यों टकराए, ताकि अमेरिका में और फिर बाकी दुनिया में चैन सुकून ख़त्म हो जाए। उसके बाद भी अलकायदा और फिर दाएश को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, मगर संसार फिर भी आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा ही रहा। वो अलग बात के इस चक्कर में इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया की वाट लग गई और फिर देवताओं ने ट्रंप को इस जगत में उतारने का फैसला किया। आज हर देश का लीडर इस चक्कर में अपना मोबाइल फोन ऑन रखता है कि रात को सोने से पहले ट्रंप साहब किस पॉलिसी में कौन सी तब्दीली का ऐलान करते हैं और सुबह उठते ही किस देश के किस लीडर को गाली ट्वीट करते हैं, धमकी देते हैं या मजाक उड़ाते हैं। रूस और अमेरिका, चीन और अमेरिका, अरब और अमेरिका, ईरान और अमेरिका में तू-तू मैं-मैं के हम हमेशा से आदी हैं, मगर आपने कभी सोचा था कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी पैसे पे पलने वाले निखट्टू कहे और फ्री ट्रेड को लात मार के यूरोपीय और फिर तुर्क स्टील आयात पे ड्यूटी दुगनी कर दे। अमेरिका तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस और माहिदों को एक के बाद एक लात मारता चला जाए कि जिन पे खुद अमेरिका ने भी हस्ताक्षेप किए हों। आपने कभी सोचा कि वो कॉन्टिनेंट जिसमें पिछले 400 वर्ष में भांत भांत का आबादकार अपने ख्वाब स्वीकार करने जाने कहां कहां से लुटा पिटा पहुंचा, आज वही अमेरिका अपने ही हमसाये मैक्सिको की सीमा पे एक पक्की दीवार उठाना शुरू करेगा और सीमा उलांग के पहुंचने वाली माओं से उनके बच्चे अलग करके उन्हें कैंपों में रखेगा और इसके पक्ष में बाइबल और रोमन एम्पायर के कानून से ढूंढ ढूंढ के उदाहरण भी लाएगा। किसी ने तसव्वुर किया था कि कनाडा एक दिन ये सोचे कि काश उसके पहिए लगे होते तो वो अमेरिका से दूर कहीं जा बसता। और जो अमेरिका के दोस्त हैं जैसे भारत, उसकी लीडरशिप भले मुंह से कुछ भी कहती रहे मगर दिल में ये ज़रूर सोचती होगी कि क्या मुसीबत है, किस तरह के आदमी से पाला पड़ गया, यही पता नहीं चलता कि आखिर चाहता क्या है। क्या बेबसी है कि ईरान से भारत तेल लेता रहे तो ट्रंप जाता है, तेल ना ले तो अर्थव्यवस्था जाती है। तो क्या किसी ने कभी दिल्ली में बैठ के सोचा था कि एक दिन पाकिस्तान और रूस की सेना बहरा अरब में फौजी मशकें करेगी, रूसी कमांडोज पाकिस्तान आके ट्रेनिंग करेंगे, रूसी जनरल वजीरिस्तान का दौरा करेंगे, पाकिस्तानी सेना रूसी हथियार खरीदेगी और पाकिस्तानी अफसर अमरीकी मिलिट्री अकेडमियों में कोर्सेज करने की बजाय रूसी वॉर कॉलेजों में रूसी इंस्ट्रक्टर्स के लेक्चर सुनेंगे। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, गॉड ब्लेस यू, दुनिया क्या से क्या हो गई।
वसत साहब की डायरी पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है 30 बॉल में। आई थिंक वहाँ पे हमें थोड़े कंपोजर की ज़रूरत है, जो हम एज ए बैटिंग यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है।
ये शब्द हैं भारत के कप्तान विराट कोहली के, लेकिन अब तो उन्हें बहुत कुछ सोचना होगा क्योंकि मेजबान इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को कल चौथे ही दिन एक पारी और 159 रन से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में पहले तो भारत को पहली पारी में महज 107 रन पर समेटा और उसके बाद क्रिस वोक्स के नाबाद 137 और जोनी बेयरस्टो के 93 रन की मदद से अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 396 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 289 रनों की बढ़त मिली और उसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारत की दूसरी पारी भी 130 रनों पर समेट दी। दूसरी पारी में हार्दिक पांड्या ने 26, कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने 17-17 और आर अश्विन ने नाबाद 33 रन बनाए। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 44 रन देकर 4 और जेम्स एंडरसन ने 23 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। और अब समीक्षा, क्या इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से सुधरेंगे भारत पाक क्रिकेट रिश्ते? वक्त वक्त की बात है। अब अगर सबको सही रहा तो इसी सप्ताह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हरदिल अजीज क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। सियासत से पहले वो क्रिकेट की बात को जोर शोर से उठाते रहे, खासकर जब भी भारत तशरीफ लाते। ऐसे में जब एक बार इमरान खान साल 2013 में दिल्ली में एक नामी अखबार के समिट यानी व्याख्यान में आए तो हमने उनसे भारत पाक क्रिकेट रिश्तों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया।
देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सीरीज है, दुनिया में कोई सीरीज को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता। एक तो इंटरेस्ट है शायकीन के लिए, दूसरा इसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उससे हम अपनी क्रिकेट की नर्सरीज, ग्राउंड है, सब डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज रिज्यूम होनी चाहिए।
खैर, वक्त जो भी हो, साल जो भी हो, सवाल तो आज भी यही है। अब अगर इमरान खान पहल करें तो होगा क्या? क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
जैसे कि हालात हैं पॉलिटिकली के हिसाब से तो मुश्किल ही है कि इमरान खान की वजह से सुधरेंगे, लेकिन क्योंकि वो इतने महान क्रिकेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान के कप्तान, वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, उनको लोग एज अ क्रिकेटर बड़े इज्जत देते हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेटर भी, फैंस भी, तो इतना जरूर फर्क पड़ेगा कि अगर इमरान बोलें कि भाई क्रिकेट के टाइज रिज्यूम होने चाहिए तो कम से कम कोई सुनवाई होगी यहाँ हिंदुस्तान में।
तो पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता इमरान खान की पहल को, तो खिलाड़ी भी अब राजनीति या सियासत के हर दाव पेच को समझते हैं। तभी तो भारत के पूर्व ऑलराउंड मदन लाल कुछ छिपाकर भी सब कुछ कह जाते हैं।
क्या वो फॉरेन पॉलिसी लाते हैं? क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि ये जो क्रिकेट है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलती है। अगर हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, बहाल रहेंगे, तो क्रिकेट भी चलेगी। क्रिकेट तो एक बड़ा छोटा सा मुद्दा है, हम तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो।
वैसे ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान और भारत सिर्फ सुहाने दिनों में आपस में क्रिकेट खेले हैं। एक और क्रिकेट समीक्षक अयाज बेमन की यादों के पिटारे से निकलती है साल 1986-87 की भारत पाक सीरीज।
मुझे याद है 1987 में जब इंडिया पाकिस्तान सीरीज हो रही थी इंडिया में, तो रिश्ते काफी खराब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी जंग छूट सकती है, सोल्जर्स दोनों ही तरफ से बॉर्डर पे खड़े हुए थे। लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए जियाउल हक इंडिया आए और फिर टेम्परेचर बिल्कुल नीचे आ गए और वो सीरीज खेली गई। मेरा पर्सनल जो यकीन है वो ये है कि अगर स्पोर्ट्स को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो दोनों ही मुल्क के रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इमरान खान क्रिकेट के बाद राजनीति के पिच पर अपनी जिंदगी की नई पारी खेलने को तैयार हैं। अब अगर इनके रहते क्रिकेट रिश्ते नहीं सुधरे तो किसके रहते सुधरेंगे? उधर वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के अजय जयराम इंडोनेशिया के शेषार हिरेन रुस्तावितो से 21-14, 21-10 से हार गए। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और विदा लेने के पहले मुख्य समाचार सिंधु आसनी से।
बीबीसी समाचार। सीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब में हुए एक धमाके में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास दक्षिणपंथी और गोरों को श्रेष्ठ मानने वाले लोगों के एक समूह ने यूनाइट द राइट नाम की एक रैली निकाली। वहीं काले लोगों के अधिकारों के समर्थक और ब्लैक लाइव्स मैटर नामक संस्था ने भी दक्षिणपंथियों के विरोध में एक रैली निकाली। माली में लोगों ने रविवार को देश का राष्ट्रपति चुनने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले। इस चुनाव में इब्राहिम बाउकबार कीता की जीत की उम्मीद जताई जा रही है। टाइफून यागी फिलीपींस से होते हुए चीन के पूर्वी इलाकों में पहुंच गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक 135,000 से ज्यादा लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।